राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధ మాధవ రాధా మాధవ రాధే జయ రాధా గిరిధరి రాధా గిరిధరి రాధే జయ 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 జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రా రఘుపతి రాఘవ రాజా రామ పతిత పావన సీతారామ రఘుపతి రాఘవ రాజా రామ పతిత పావన సీతారామ రాజా రామ రాజా రామ పతిత పావన సీతారామ రాజా రామ రాజా రామ పతిత పావన సీతారామ రఘుపతి రాఘవ రాజా రామ పతిత పావన సీతారామ జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జ్ఞానతిమిరందస్య జ్ఞానానజన్శలాకయా చక్షురోన్మిలితం జైన తస్మై శ్రీగురువే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం జైన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సక్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపే विश्व गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर। हरे कृष्ण वंशी विभूषित करा नवनीरदाभान पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदन स्य मे। सदास्तु सामन जु मंगल प्रदा नीलांबुज मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशा यत चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो प्रति शुक्रवार को हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन बहुत ही करीब होने के कारण आज हम भगवान श्री रामचंद्र की एक लीला का श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र की लीला अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए या कराने के लिए अनंत शेष जिनके अनंत अनंत मुख है, अपने अनंत मुख के द्वारा अनंत अनंत काल से अनंत अनंत काल तक भगवान की कथा कहते आए हैं, फिर भी भगवान की लीला का शेष नहीं कर सके। तो भगवान की कथा भगवान की कृपा अनंत है, परंतु उन कृपा में से एक कृपा बिंदु का वर्णन हम यहां पर करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र का अवतार इस संसार के जीवों को किस प्रकार से संसार में रहना चाहिए यह सिखाने के लिए हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, अपनी भगवत्ता दिखाते हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र में ऐसा नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार से एक मनुष्य को अपना जीवन मर्यादित करते हुए जीवन जीना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र अपने आचरण से सिखाते हैं। केवल रामचंद्र ही नहीं, भगवान के जितने जितने अवतार हैं, भगवान के अवतार के कुछ प्रयोजन होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अवतार लेने के तीन कारण भगवद गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, इस धराधाम पर मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और असुरों का विनाश करने के लिए आता हूं, यह दूसरा कारण। और तीसरा कारण बताते हैं कि हे अर्जुन, इस धराधाम पर मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूं। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए यहां पर आते हैं, उन्होंने कहा तो है, परंतु भगवान का वास्तविक प्रयोजन इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आना नहीं है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो स्पेशल धर्म की स्थापना करने के लिए टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ करना नहीं होता है। भगवान जब इस धराधाम में आते हैं और कुछ कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक धर्म की स्थापना हो जाती है। अलग से भगवान को धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया, भगवान तो स्वाभाविक अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका था, उसे स्वाभाविक भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। परंतु वही ज्ञान, वही अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वही वार्तालाप धर्म की स्थापना हो गया। स्पेशल भगवान ने कोई मेहनत नहीं किया धर्म की स्थापना करने के लिए। और भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए यहां पर आने की जरूरत नहीं। वे तो अपने धाम से किसी भी पार्षद को, किसी भी गोपी को या मंजरी को भेज सकते हैं यहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान का मुख्य कारण धर्म की स्थापना करना नहीं है, और भगवान का मुख्य कारण अवतार लेने का दुष्टों का विनाश करने के लिए भी नहीं है। यद्यपि गीता में कहते हैं मैं असुरों का विनाश करता हूं यहां पे आकर, परंतु भगवान को यदि असुरों का विनाश करना हो तो कल्पना कीजिए कि भगवान को यहां पर आने की इतना कष्ट उठाने की जरूरत पड़ती है। जो भगवान अपने धाम में बैठकर अपने आंख के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय करते रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में, किसी एक ब्रह्मांड में रहने वाले एक छोटे से रावण को मारने के लिए भगवान स्पेशल अपने धाम से उतरकर यहां पर आएंगे? कभी नहीं। भगवान चाहे तो अपने एक इशारे से करोड़ों करोड़ों रावण को मार सकते हैं। वे रावण जैसे असुरों का वध करने के लिए भी नहीं आते हैं। भगवान का आने का, भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यदि है तो वो है अपने भक्त को आनंद देना। भगवान इस संसार में अपने भक्त को आनंद देने के लिए कई सारे अवतार लेते रहते हैं, और उसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार लिया और भगवान का जन्म, भगवान का अवतार इस मधु मास में नवमी तिथि के दिन नौमी तिथि मधुमास पुनीसा पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत मुरहूता। नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर को 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। और जन्म होते ही भगवान श्री रामचंद्र कृपा बरसाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र अपने इस जीवन काल में कई लोगों पर कृपा बरसाए हैं, परंतु सब लोगों की कृपा की चर्चा तो हम नहीं कर सकते हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र की कृपा पात्र एक भक्ता है। स्त्री शरीर में होते हुए भी जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, वैसे तो स्त्री स्वाभाविक अज्ञानी मूढ़ होती है, पवित्र होती है, परंतु दिखा दिया कि किस प्रकार भगवान की प्राप्ति स्त्री शरीर में भी हो सकती है। तो ऐसे ही भगवान की एक परम और शुद्ध भक्ता श्री शबरी जी की कथा आज हम श्रवण करेंगे। शबरी जी की कथा कई सारे पुराणों में दी गई है। शबरी जी अगले जन्म में एक राजा की पुत्री थी, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा, और शबरी जी राजा की पुत्री राजकन्या थी। कभी भी इस राजकन्या ने अपना पांव जमीन के ऊपर नहीं रखा था। घर से बाहर निकलना होता तो डोली लेकर डोली ढोने वाले खड़े रहते थे, और सदैव उनके आगे पर्दा लगा हुआ होता है था, किसी को देख नहीं सकती थी। यद्यपि यह राजकन्या जन्म से ही सत्व गुण में थी, जन्म से ही भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम था, और इनकी सदैव इच्छा होती थी कि मैं साधु और संतों का संग करूं। परंतु राज परिवार में जन्म लेने के कारण वे साधु संतों का संग नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन था, बहुत पहरेदार उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। साधु संतों का संग इस कन्या को नहीं मिला। तो एक दिन उन्हें पता चला कि प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ है, तो साधु वहां पर प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो देश विदेश से अलग अलग साधु, सैकड़ों हजारों लाखों साधु उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय के, भिन्न भिन्न मत के, भिन्न भिन्न धर्म के सभी साधु एकत्र होते हैं उस कुंभ मेले में। तो इस कन्या ने सोचा, राजकन्या ने सोचा कि जाकर मैं साधुओं का दर्शन करूंगी, क्योंकि साधु के दर्शन करने से हृदय पवित्र होता है। भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर गाते हैं, गंगा र पर शैल पश्चात पावन दर्शन पवित्र करो ए तुमार गुण। वे कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु साधु का केवल यदि कोई दर्शन कर ले, गंगार परश हैल पश्चात पावन, गंगा नदी का स्पर्श करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु साधु का केवल स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, साधु को कोई व्यक्ति केवल देख ले तो उनके उनका हृदय पवित्र हो सकता है। हजारों हजारों जन्मों से जो पाप छिपा हुआ है वो पाप जलकर भस्म हो जाता है केवल भक्तों का दर्शन करने से। तो यह राजकन्या ने सोचा कि कुंभ में जाऊंगी और साधु संतों का दर्शन पाऊंगी। अपने पिता राजा को कहा कि मुझे कुंभ में जाना है। राजा ने बहुत बड़ी सेना भेजी इसके साथ, आई थी बिचारी साधुओं का दर्शन करने के लिए, परंतु इतनी बड़ी सेना और इतने पर्दे थे, ये सेनाओं ने जहां पर, अब तो राजकन्या जहां पर आना चाहती हो वहां तो कर्फ्यू लग जाता है, एक साधारण मंत्री भी, मंत्री की बात छोड़ दीजिए, एमएलए भी यदि रास्ते से निकल रहा हो तो सब फेरे वाले और सब रास्ते में जितने भी लोग हैं सब कर्फ्यू लग जाता है। ये तो चक्रवर्ती राजा की पुत्री थी राजकन्या, उनके लिए स्पेशल घाट बनाया गया। जितने भी साधु संत से वहां से दूर हो गए, बिचारे ने स्नान किया, कुंभ में गई, परंतु किसी संत का दर्शन नहीं कर सकी। संत का दर्शन नहीं करने के कारण हृदय में बहुत दुख हो रहा था और यही विचार आ रहा था कि इतने बड़े परिवार में जन्म हुआ है, राजा के घर पर राजकुमारी बनकर मैं जन्म ली हूं, परंतु जीवन का जो असली लाभ है वह प्राप्त नहीं हो रहा है। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करने का और मनुष्य जीवन प्राप्त करके धन प्राप्त होने का यही लाभ है कि हम साधु संतों का दर्शन करें और भगवान की भक्ति करें। परंतु मनुष्य जीवन और इतना सुख धन संपत्ति यह मिलने के बाद भी यदि साधु संत का दर्शन और भजन नहीं हो रहा है तो यह जीवन तो जल जाने के लायक है। जरूर जाओ सु जीवन जान की नाथ जिए जग में तुम रो बिनु भय। जान की नाथ भगवान श्री रामचंद्र और भगवान के भक्त के दर्शन के बिना यह जीवन तो जला देने के योग्य है, जीवन कुछ काम का नहीं है। तो मन ही मन में यह सोच रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अब अगली बार मुझे तुम्हें जन्म देना है तो इसे राज परिवार में जन्म मत देना, एक गरीब के घर पर जन्म देना ताकि मैं साधु संतों का संग कर सकूं, साधु संतों की मुख से कथा श्रवण कर सकूं। और अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम अंत मति सो गति। जिस प्रकार से जैसी जिसकी मति होती है ऐसी उसकी गति होती है। ये राजकन्या ने सोचा कि गरीब परिवार में जन्म मिले, उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात जैसी उसकी इच्छा थी उसे वैसे ही एक गरीब परिवार में जन्म मिला। और गरीब परिवार कैसा गरीब परिवार, शबर जाति के घर पर इनका जन्म हुआ। शबर का अर्थ होता है सुअरों को खाने वाले जो लोग होते हैं उसे शबर कहा जाता है। और शबर जाति का जन्म हुआ इसीलिए इस कन्या का नाम दूसरे जन्म में शबरी रखा गया है। शबर के घर पे जन्म होने के कारण शबरी इसका नाम नहीं है, ये जातिवाचक नाम है। जैसे हम कहते ना पटेल साहब, तो ये पटेल किसी का नाम नहीं है, ये जाति है, सरनेम है। तो ठीक उसी प्रकार ये शबरी जो है ये मुख्य नाम नहीं है, मुख्य नाम तो इसका और ही है परंतु ये उसकी जाति है। जैसे हम कहते हैं सूत गोस्वामी, तो ये सूत नाम नहीं है, सूत नाम की जाति है, उसका नाम तो उग्र शवा है। तो इस प्रकार से संसार में शबरी नाम से ये प्रचलित हुई। दूसरा जन्म शबर की योनि में, शबर जाति में हुआ। जब 16 साल की हुई तब इनका विवाह नक्की किया गया। दूसरे दिन विवाह था, विवाह के अगले दिन रात को ये शबरी ने देखा कि घर के आंगन में 100 गाय बकरी भेड़ इत्यादि जंगली प्राणियों को लाकर बांध कर रखा है। तो शबरी घर के आंगन में आई, देखा कि इतने सारे प्राणियों को घर पर बांध कर रखा है। गई अपने माँ के पास और अपनी माँ को पूछा, मैया आज इतने सारे प्राणियों को हमारे घर पर क्यों बांध कर रखा है। तो शबरी जी की माता ने निखालस भाव से कहा कि बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारी जाति में विवाह में यह रीत होती है कि बारात जो आती है उस बारात को गाय और बकरी का मांस खिलाना पड़ता है। तो कल बारात वालों को यह सब प्राणी जितने बंधे हुए हैं यह सबको पकाकर इसका भोजन खिलाना है। शबरी जी ने जैसे ही यह सुना, क्योंकि हृदय तो पवित्र था, मन शुद्ध था, यह सुनकर ही उनका हृदय कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए और तुरंत सोचने लगी कि मेरे एक विवाह करने के कारण 100 प्राणियों की हत्या होगी। शबरी जी सोचने लगी मैं क्या करूं क्या करूं। रात को घर वाले जब सभी लोग सो गए तो शबरी जी उस घर के आंगन में आई और घर के आंगन में आकर एक एक करके सभी प्राणियों को छोड़कर जंगल में भगा दिया। और सभी प्राणी जो बंधे हुए थे मुक्त हो गए, और मुक्त होते ही सभी प्राणियों ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तुमने हमें मुक्त किया है उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहकर जीवन मुक्त हो जाओगी। वास्तव में इस संसार में जो प्राणी बंधे हुए हैं, इस संसार में कत्ल करने के लिए जो कसाई प्राणियों को बांधकर रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, भक्त को चाहिए, एक सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे प्राणियों को छुड़ावे। यदि ऐसे प्राणियों की सेवा करते हैं तो हमें बहुत पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। इतने प्राणियों को छुड़ाने से शबरी को आशीर्वाद मिला और वे आशीर्वाद तुरंत शबरी जी के मन में तुरंत आया कि अब मुझे भी इस घर में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह तो कभी ना कभी ये लोग करने ही वाले हैं और विवाह करने से इतने प्राणियों की हत्या मैं नहीं देख सकती हूँ। प्राणी मुक्त हो गए और प्राणियों के आशीर्वाद से शबरी भी अपना घर छोड़कर जंगल में भाग गई, वन में चली गई। प्रश्न होता है शबरी जी मुंबई में क्यों नहीं आई होगी, वन में क्यों चली गई। प्राय हमारे मन में यह प्रश्न होता है, कोई भी व्यक्ति खास करके भक्त जब जीवन में बहुत टेंशन में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो यही सोचता है कि हम वन में चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। शबरी जी वन में चली गई क्योंकि वास्तव में वन ही भजन करने के लिए अनुकूल है। ये जो भजन और भक्ति है ये बंबई जैसे शहर में नहीं हो सकती है, ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से कैसे भी करके खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं भक्ति को, परंतु स्वाभाविक शुद्ध भक्ति तो वन में हो सकती है, क्योंकि वन में योग्य भजन करने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। इसलिए सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को पूछा, प्रहलाद तुमने आज तक जो शिक्षा प्राप्त की उस सभी शिक्षाओं में से सबसे बेस्ट और अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को उत्तर देते हैं, तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिना। क्या है, मिथो विपद्येत गृह व्रताना अदांत गोपी। तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिना, मिथो विपद्येत सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् इत्वार्थ पाथम गृहम अंधकूपम वनम गतो ये हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, इस संसार में सबसे अच्छी सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस संसार में सबसे अच्छी बात यह है कि इस संसार में भौतिक तीनों ताप से दुखी होकर इस संसार के व्यक्ति को चाहिए कि यह शहर छोड़कर वृंदावन जाकर भगवान का नित्य भजन करे। प्रहलाद महाराज की दृष्टि से भी वन ही अच्छा है भजन करने के लिए। और ध्रुव महाराज भी, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति करने के लिए मधु वन में ही भेजा। वन बहुत अच्छा होता है भजन करने के लिए और भगवान भी वन को बहुत पसंद करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र यद्यपि अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, परंतु उन्होंने वन में रहना पसंद किया, 14 वर्ष तक वन में रहे। और कृष्ण का तो जन्म ही वन में हुआ, सदा वन में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में आने के बाद भी झारखंडों के वन में जंगलों में ही पड़े रहते थे। भगवान को वन बहुत पसंद है और भक्त को भी वन बहुत पसंद है। तो शबरी जी घर छोड़कर वन में चली गई, क्योंकि वन में अनुकूल वातावरण होता है और वन में ही निश्चित रूप से भगवान मिलते हैं। एक दृष्टांत कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार एक बादशाह को अल्लाह से मिलने की इच्छा हुई, भगवान से मिलना चाहते थे। तो भगवान से मिलना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि भगवान से मिलने के लिए लोग जंगल में जाते हैं, साधु बनकर जंगल में चले जाते हैं, तो सोचा कि मैं भी जंगल में जाऊंगा। लेकिन दूसरे ही घड़ी में वे सोचने लगे कि जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह पर है, भगवान तो घर पर भी मिल सकते हैं। तो राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया, जंगल में जाना बंद किया और अपने घर पे ही पड़ा रहा और सोचने लगा, यदि मन चंगा तो कथोटी में गंगा। संसार के लोग कहते हैं ना, ये सब मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है, सब वृंदावन जगन्नाथपुरी जाने की क्या आवश्यकता है, मन चंगा है, मन यदि पवित्र है तो कथोटी में गंगा, घर पर ही गंगा। परंतु ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि चंगा मन किसे कहा जाता है और मन चंगा कैसे, मन पवित्र कैसे होता है। मन पवित्र भगवान के पास जाकर ही होता है। तो ये बादशाह ने सोचा कि भगवान घर पर मिल जाएंगे और यह बात संत कबीर को पता चला। संत कबीर ने सोचा कि यह बादशाह को विचार अच्छा आया है, परंतु उनका जो इरादा है वह गलत है। तो संत कबीर ने एक उठहारे का रूप लिया। उठहारा का अर्थ आप जानते हैं, ऊंट का पालन करने वाला, ऊंट को, ऊंट का जो बिजनेस करता है, ऊंट को बेचता है, उसे उठहार कहते हैं। तो कई सारे ऊंट को लेकर उठहारा बनकर संत कबीर आए उस राज्य में, राजा के महल के पास। और राजा के राज्य में आकर वह संत कबीर उठहारे के रूप में सभी घरों घरों में जाकर बेल बजाकर पूछने लगे कि मेरा एक ऊंट घूम गया है, क्या आपके घर पर आया है। सभी घर पे जाकर, चाहे बड़ा महल हो चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, अरे छोटी सी झोपड़ी में बकरी भी नहीं आ सकती है, ऐसे घरों में जाकर संत कबीर पूछने लगे, क्या मेरे ऊंट को देखा आपने, आपके घर तो नहीं आया है, क्या आपके घर ऊंट नहीं आया है। कुछ लोगों को लगता कि ये चोर है, देखने के लिए आया है घर पर कैसे व्यवस्था है क्या है। राजा को कंप्लेंट की गई, राजा ने उठहारे को अपने राज्य में सभा में बुलाया और कहा कि क्यों तुम अपने ऊंट को सभी के घरों पे ढूंढ रहे हो, कहां तुम्हारा इतना लंबा ऊंट और कहां ये सबके बिचारे के छोटे छोटे घर। अरे ढूंढना है तो ऊंट को जंगल में ढूंढो, यहां पर थोड़ी ना मिलेंगे घर पर। उठहारे ने इतना ही कहा कि राजन, यही समझाने के लिए मैं यहां पर आया हूं, एक ऊंट को ढूंढने के लिए आप मुझे जंगल में भेज रहे हो, तो ये सभी प्राणों के भगवान जो विभू है, जिसके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे विशाल भगवान को ढूंढने के लिए क्या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऊंट, इतना छोटा सा ऊंट यदि घर पर नहीं आ सकता है तो इतने बड़े भगवान आपके घर में कैसे आएंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। रोज न निकलो तो कोई बात नहीं, कम से कम रविवार को तो प्रभुपाद जी की कृपा से जो इस्कॉन सेंटर बने हैं, इस्कॉन मंदिरों में आकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो शबरी जी जंगल में चली गई और जंगल में जाकर, घोर जंगल में गई। उस जंगल में शबरी ने एक साधु की कुटिया देखी और साधु की कुटिया में कई सारे संत रहते थे और शबरी जी उसी कुटिया के पीछे एक पेड़ के नीचे रहने लगी। सबरी जी पति प्रतिदिन ये साधु संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 4 बजे। सबरी जी रात को 2:30 बजे उठकर ये साधु संतों का जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाहर का भाग झाड़ू से साफ कर देती थी। इतना ही नहीं, ये साधु संत ऋषिगण सुबह उठकर अपनी कुटिया से नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, तो नदी में स्नान करने के लिए जो रास्ता था वह रास्ता भी झाड़ू से साफ करके, बिल्कुल कचरा बचरा लेकर बिल्कुल साफ करके वे वापस चली जाती थी। सुबह उठकर ये सभी ऋषि सभी साधु देखते तो यह सब कुछ ठीक से साफ किया हुआ मिलता। वैसे एक नहीं, कई महीने बीतने के बाद, कई महीनों तक यह चलता रहा, और कई महीने बीतने के बाद ये सभी लोगों ने सोचा कि अरे पहले तो हमें रोज ये साफ सफाई करनी पड़ती थी, परंतु कौन है जो हमारा रास्ता और हमारी कुटिया झाड़ू से साफ करके चला जाता है। और उस सभी ऋषि के जो गुरु थे उनका नाम था मातंग ऋषि, और मातंग ऋषि के सभी शिष्य वहां पर रहते थे। मातंग ऋषि को पता चला कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और सेवा करके चला जाता है। मातंग ऋषि भी साधारण ऋषि नहीं थे, इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही समझिए मातंग शब्द ही उनकी व्याख्या है, वो ऋषि का इंट्रोडक्शन है। मत अंग भगवान के रस में, भगवान के अंग का जो निरंतर ध्यान करते रहते हैं उसे मातंग कहा जाता है। तो ऐसे मातंग ऋषि को पता चला कि कोई यहां पर सेवा करके चला जाता है। मातंग ऋषि ने कहा कि आज ही उसे पकड़ो, आज ही उसे पकड़ो और देखो कि वह कौन है हमारी सेवा कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार से सेवा करना यह बहुत गलत चीज है। क्योंकि सेवा, यदि हमारी कोई सेवा करता है तो उससे सबसे बड़ी दो हानि होती है। सबसे पहले सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा करता है उसकी सुकृति और उसकी भक्ति को हर लेता है। सेवा करने से जिसकी सेवा हो रही है उसकी भक्ति चली जाती है, और जो सेवा करते हैं उसे उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है, यदि भक्ति चाहते हैं, यदि बहुत जल्द भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और शबरी जी ने यही किया, और मातंग ऋषि ने कहा कि यदि हमारी कोई सेवा करता है तो सेवा करने के करने वाले के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है निश्चित रूप से। यदि हमारी आज से कोई सेवा करने लगे, आज तक कोई किसी में आसक्ति नहीं है, परंतु सेवा करने वाले के प्रति आसक्ति हो ही जाती है, आसक्ति हो जाती है और भक्ति चली जाती है, इसका अर्थ जीवन का पतन होता है। मातंग ऋषि ने कहा कि ढूंढो वह कौन है। दूसरे दिन सुबह ये सब ऋषि 4 बजे उठते थे परंतु रात को सोए ही नहीं, सोए नहीं और देखे कि कौन आता है। तो रात को 2:30 बजे शबरी जी उठकर झाड़ू लेकर आई, और जैसे ही वह कुटिया साफ करने गई तो मातंग ऋषि के सभी शिष्य चारों ओर से उसे घेर लिए और घेर कर उसे डांटने लगे। शबरी जी तो हाथ जोड़कर पांव में गिर गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, डर गई बिचारी। उस घने जंगल में इस प्रकार से सभी ऋषियों जब डांटने लगे तो डर गई, डर कर मातंग ऋषि के चरण में प्रार्थना करने लगी कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कोई गलत भाव नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूं। मातंग ऋषि ने शबरी जी के भाव को देखकर, यद्यपि यह शबर योनि की थी, शबर जाति की थी, परंतु मातंग ऋषि ने देखा कि ये भगवान की भक्ति प्राप्त की है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है फिर भले वह शबर यो शबर जाति में भी जन्म क्यों न लिया हो, वह साधु माना जाता है। गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो भगवान को कहना पड़ा सुदुराचार हो, सुष्ठु कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, भजते माम अनन्य भाग, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति ही मेरा भजन करता है तो साधु रेव समंतव्य। तो मेरा मत है कि उसे साधु ही कहना चाहिए, वे साधु है। और भगवान संसार के लोगों को कहते हैं कि ध्यान रहे, भले वह कितना पापी पहले क्यों न हो, परंतु आज वो मेरी भक्ति करता है तो सबको उसे साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो शबरी जी भले शबर परिवार में जन्म ली थी, परंतु भगवान का भजन कर रही थी, और भगवान का भजन करने वाले से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान स्वयं कहे हैं कि भक्तिवंत अति नीचव प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भगवान कहते हैं ये मेरा वचन है कि कितना भी नीच परिवार में जन्म क्यों न लिया हो, परंतु उनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है तो निश्चित रूप से वह मेरे प्राण से भी वह प्रिय है। और आगे भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन विरंच किन होई, बिना भक्ति के, भक्ति के बिना यदि ब्रह्मा भी क्यों न हो, भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीव हूं सम प्रिय मोहि सोई। ब्रह्मा भी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मेरा दुश्मन है, और एक चांडाल लेच भी यदि मेरा भजन करता है तो मेरे प्राण से भी वह प्रिय है। इसलिए भगवान एक पद्म पुराण में कहते हैं, चांडालो अपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजादिक। चांडाल कर देता है कुत्ते को खाने वाला, कुत्ते को खाने वाला यदि मेरी भक्ति करने लगता है तो मुझे वो ब्राह्मण से भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि विष्णु भक्ति विनश्य द्विजो अपि शोपचादिक। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करने वाला का वाले का जाति पाति नहीं देखा जाता है। एक जगह पर कहा गया है कि वैष्णव वैष्णवों में और गुरु में यदि कोई नर मत नर बुद्धि रखता है, जाति बुद्धि रखता है, तो कहते वा नारकी स, निश्चित रूप से वह नरक में जाएगा। भगवान के भक्त की जाति नहीं देखी जाती है। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में यह जाति पाति का बहुत देखा जाता है, स्पर्श अपर्श इसका बहुत देखा जाता है। प्रसाद बनाने के पहले पूरा स्नान किया जाता है और वही कपड़े से प्रसाद बनाते हैं। तो एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य भगवान का भोग बनाने के लिए जा रहे थे, नदी में स्नान करके भीगे हुए कपड़े में जा रहे थे, तो उतने में रास्ते से एक व्यक्ति आया और वल्लभाचार्य के चरण को पकड़ लिया, पवित्र हो गए। वल्लभाचार्य ने पूछा कि आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं आपका भांजा हूं। वल्लभाचार्य ने दूसरी बार पूछा आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं आपका भांजा हूं। तीसरी बार पूछा कौन हो, उन्होंने कहा मैं आपका भांजा हूं। वल्लभाचार्य को दूसरी बार स्नान करना पड़ा, क्योंकि स्पर्श करने वाला इतना भी नहीं जानता था कि हम कौन हैं। उसी प्रकार वल्लभाचार्य जब स्नान करके आए तो रास्ते में भांजा तो चला गया और एक व्यक्ति मिला और उसने वल्लभाचार्य के चरण पकड़ लिए, पकड़ लिया। और वल्लभाचार्य ने इसे भी वही प्रश्न पूछा आप कौन हो, आप कौन हो। आप तीन बार जब प्रश्न पूछा तब उन्होंने कहा कि गीता के अनुसार यदि आप पूछ रहे हो तो मैं आत्मा हूं, और चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के मत से यदि आप पूछ रहे हो तो मैं कृष्ण का दास हूं, और फिलहाल वर्तमान में यदि मेरी स्थिति आपको जानना है तो मैं एक वैष्णव हूं। वल्लभाचार्य ने कहा मुझे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव तो जन्म से ही पवित्र होते हैं। वैष्णव विष्णु का भक्त, वैष्णव किसे कहते हैं, एक बार भी अपने मुख से विष्णु का नाम ले लेता है उसे वैष्णव कहा जाता है। और वैष्णव की यदि बड़ी परिभाषा चाहिए तो नरसिंह मेहता के पास जाना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जानी रे। जे दूसरों की पीड़ा को जानते हैं उसे वैष्णव कहा जाता है। पूरे भजन में बहुत सुंदर कहा गया है। खैर, परंतु वैष्णव जो होते हैं भगवान के भक्त परम पवित्र होते हैं। इसलिए मातंग ऋषि ने शबरी जी को स्वीकार किया और शबरी जी को हरिनाम दीक्षा दे दी, उनके गुरु बने। तो इस प्रकार से शबरी जी प्रतिदिन मातंग ऋषि की सेवा कर रही थी और इस प्रकार से सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। मातंग ऋषि बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद मातंग ऋषि भगवान के धाम में जा रहे थे। जब मातंग ऋषि अपनी कुटिया को छोड़कर जा रहे थे, शबरी बहुत दुखी हुई कि आपका सहारा था, आपकी सेवा करके मैं जीवन जी रही थी और आप चले जा रहे हो। बहुत दुख लगा शबरी जी को। मातंग ऋषि ने शबरी को इतना ही कहा कि हे शबरी, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी सिखाया है, जो सिखाया है उस प्रकार से तुम जीवन जीना, साधु संतों की सेवा करना। परंतु शबरी जी ने कहा कि आप जा रहे हो उसका मुझे दुख है। कबीरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। राम का बुलावा आया, भगवान श्री रामचंद्र ने कबीर जी को उनके धाम में बुलाने के लिए विमान भेजा कि आप धाम में आ जाओ। लेकिन जब विमान को देखा तो कबीर जी रोने लगे। अब भगवान के धाम में जाने के लिए तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। कहते राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, क्यों रोने लगा? पूछा गया कि आप क्यों रहे हो? तब कबीर जी ने कहा, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में न होए। जो सुख यहाँ पर संतों के संग में है वह सुख वैकुंठ में भी नहीं है। तो सबरी जी यही कह रही थी कि गुरुजी आपके साथ जो आनंद कथा कीर्तन में जो आनंद आ रहा था नहीं आएगा। तब मातंग ऋषि ने शबरी जी को इतना ही कहा कि हे देवी, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मुझे मेरी झोपड़ी से निकलकर भगवान के पास जाना पड़ रहा है, परंतु तुम्हारी इतनी गुरु निष्ठा और भगवान में इतनी निष्ठा होने के कारण तुम्हारी निष्ठा से भगवान को एक दिन आपके पास आना पड़ेगा। तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो हम जैसे लोगों को जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को जाने की आवश्यकता है। भगवान तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। मातंग ऋषि का आशीर्वाद शबरी जी के ऊपर। मातंग ऋषि चले गए और शबरी जी बिचारी अकेली एक उसी कुटिया में, मातंग ऋषि की कुटिया में रहने लगी। शबरी जी अकेले अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, भगवान की राह देख रही थी। एक समय की बात, शबरी जी प्रतिदिन भगवान के आने की राह देख रही थी और भगवान के लिए रास्ता साफ कर रही थी। तो रास्ता साफ करते करते कई सारे साधु संत ऋषि वहां से गुजर रहे थे। तो शबरी जी का, अब वो तो नीचे देखकर साफ कर रही थी, तो शबरी जी का स्पर्श कुछ ऋषि मुनियों से हो गया, कुछ स्पर्श हो गया। तो ऋषि मुनियों इतना क्रोधित होने लगे कि ये नीच कुल में पैदा हुई, हमसे स्पर्श किया, डांटने लगे, क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है? दूर जाकर झाड़ू मारना चाहिए, हम लोग रास्ते से निकलते हैं तो आपको दूर हो जाना चाहिए, क्या इतनी बुद्धि नहीं है? शबरी जी ने प्रणाम किया, कहा मुझसे क्षमा हो गई, आपने मेरे जैसे नीच कुल में जन्म लेने वाले से स्पर्श हो गया, इसलिए आप स्नान कर लीजिए। फिर भी ये लोग बहुत डांटने लगे और डांट कर जब स्नान करने के लिए नदी में गए तो नदी में जाकर यह सभी ऋषियों ने देखा कि नदी में जल तो था ही नहीं, परंतु जल के बदले कई सारे कीड़े मकोड़े थे और रक्त पित्त और खून इत्यादि वहां पर बह रहा था। तो ये साधुओं ने सोचा कि ये शबरी के नीच कुल में जन्म लेने वाली महिला का ही यह प्रताप है। यही इस नदी में स्नान की होगी, इसलिए नदी अपवित्र हो गई। शबरी के ऊपर बहुत दोषारोप करने लगे। तो इस प्रकार से शबरी जी यह सहन करते हुए अपना जीवन बिता रही थी। और प्रतिदिन गुरु में इतनी निष्ठा थी, भगवान में इतनी निष्ठा थी, प्रतिदिन भगवान के लिए रास्ता साफ करके उस रास्ते के ऊपर फूल इत्यादि बिछा कर रखती थी और भगवान के लिए सुंदर सुंदर फल इत्यादि ला कर रखती थी। रात को सोचती थी कि सुबह मेरे प्रभु आएंगे, पूरी अरेंजमेंट करके रखती थी। शाम तक राह देखती थी, प्रभु नहीं आए। दूसरे दिन वही उत्सुकता के साथ, वही श्रद्धा के साथ भगवान की राह देखती थी। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान की राह देखते 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 सैकड़ों वर्ष बीत गए। आप कहेंगे सैकड़ों वर्ष कैसे बीत गए? आश्चर्यचकित मत होइए, वह त्रेता युग था और त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती है। और 1,00,000 वर्ष में 10,000 वर्ष की होती है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की होती है और त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र होती है। और उसमें सैकड़ों वर्ष बीत गए। शबरी जी बूढ़ी हो गई, बाल पक गए, देखना धीरे धीरे बंद हो गया, परंतु अपनी श्रद्धा कम नहीं हुई। गुरु ने जो कहा था भगवान आएंगे, तो प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र की राह देखकर शबरी जी देखती थी और मन में यही सोचती थी। मनो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूपड़िए आओ मारा राम। मनो मोरली मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूपड़िए आवो मारा राम। मन नो एक वार आवी पूरो हैया के रिहाम, मारी जो पड़िए आवो मारा राम। आवी पूरो हैया के रिहाम, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा। संध्या ढले ने हूँ तो बनु रे निराशा, संध्या ढले ने हूँ तो बनु रे निराशा। रात दिवस हूँ तो जो तारी वाट, रात दिवस हूँ तो जो तारी वाट, मारी जो मारी जो पड़िए आवो मारा रा। मन नो मोरलियो रटे तारू ना, मारी झूपड़िए आओ। मन नो आरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे, आरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे।
दर्शन विना रे मारू मन डूमू जाय छे। दर्शन विना रे मारू मन डूमू जाय छे। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण। मारी जो पड़िए आवो मारा मन नो मोरलियो रटे तारू नाम। मारी जो पड़िए आओ मारा राम। सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारू। सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारू। करी नाखू जीवन कुर्बान मारू। करी नाखू जीवन कुर्बान मारू। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारी लाज। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारी लाज। मारी जो पड़िए आओ मारा। मन नो मोरलियो रटे तारू नाम। मारी जो पड़िए आओ मारा राम। मारी जो पड़िए आओ मारा राम।
इस प्रकार से प्रतिदिन शबरी जी भगवान श्री रामचंद्र के आने की राह देख रही थी कि कब मेरी झोपड़ी में आएंगे, कब मैं उसे दर्शन करूंगी, उसे भोग अर्पित करूंगी। शबरी जी के जीवन का लंबा समय बीता और एक दिन भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी की श्रद्धा को देखकर निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और शरणागति होनी चाहिए। शबरी जी की तरह हमारे हमें हमारा कोई होता, शबरी जी की तरह हम होते तो एक दो महीने में तो हम ये सब भजन भक्ति बंद कर दिए होते। अरे ये बात छोड़ दीजिए, हमारे घर पर किसी मेहमान ने कह दिया है कि हम आपके घर पर आएंगे और उनके लिए हम सब व्यवस्था करके रखते हैं, एक बार भी यदि मेहमान नहीं आते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं कि इतना कुछ किया हुआ बिगड़ गया, ये हुआ वो हुआ। ये प्रतिदिन भगवान के लिए मेहनत करके सब तैयार करके रखती थी, भगवान नहीं आते थे फिर भी उनकी श्रद्धा कम नहीं होती थी, दिन पर दिन श्रद्धा बढ़ रही थी। और इसी श्रद्धा और इसी उत्सुकता को देखकर भगवान श्री रामचंद्र शबरी के पास ढूंढते ढूंढते आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र पूछते पूछते आए कि आपने शबरी का घर देखा है, हमें उनके घर जाना है। और जो ऋषि मुनि ने कुछ ऋषि मुनियों ने शबरी जी का अपराध किया था, वे ऋषि मुनि को ही भगवान ने पूछा कि शबरी का घर देखा है, उनके घर हमें जाना है। तब तो वह ऋषि मुनि तो इतने लज्जित हो गए, अरे बाप रे बाप, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जिनके घर पर भगवान जा रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं, यदि हमारी भक्ति पूर्ण होती तो हमारे पास आते, ये तो हमें पूछ रहे हैं शबरी कहां पर है, तो बहुत लज्जित हुए। और भगवान श्री रामचंद्र ढूंढते 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 शबरी जी के आंगन में गए। शबरी जी ने भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान के नजदीक नहीं गए, क्योंकि प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम होता है वे अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है। शबरी जी अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रही थी, वे सोच रही थी कि मेरा जन्म नीच परिवार में हुआ है, आज तक मैंने कुछ धर्म नहीं किया, कुछ भजन नहीं किया, और इतने बड़े प्रभु चलकर मेरे आंगन में आए हैं। शबरी जी ने सोचा कि मैं बहुत नीच हूं, भगवान के पास नहीं गई। वास्तव में भगवान के भक्त में दैन्य प्रदान होता है। जब किसी के हृदय में भक्ति का उदय होता है तो उसमें नम्रता आ जाती है। तो शबरी जी नहीं पास गई, परंतु भगवान श्री रामचंद्र चलकर आए, शबरी जी को आशीर्वाद दिए। शबरी जी ने भगवान के लिए कुछ बेर चुनकर रखे थे और देखकर बेर तोड़ती थी और चखती थी, ये खट्टे तो नहीं है, मीठे मीठे बेर शबरी ने रखे थे। और कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अखिल ब्रह्मांड के नाथ ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री रामचंद्र ने उस दिन शबरी के झूठे बेर खाए। धन्य है वह शबरी जो इतने नीच परिवार में जन्म लेकर भी भगवान को प्राप्त हो गई। और धिक्कार है उस लोगों को जो इतने बड़े बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, सुख संपत्ति धन गाड़ी बंगला मोटर होते हुए भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। शबरी जी के झूठे बेर भगवान ने खाए हैं और प्रेम से खा रहे हैं। वास्तव में भगवान का स्वभाव होता है, अपने भक्त के सामने वह अपना कर्तव्य और सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं भगवान अपने भक्त के सामने। कृष्ण लीला में भी आप देखिए, कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जब वन में जाते थे, एक समय की बात है, कृष्ण भोजन कर रहे थे, एक सखा अपना सब भोजन खोलकर भोजन करने लगा, साथ में मैया ने उसे छाछ दी होगी, तो छाछ दो घूंट पिया तो बहुत अच्छी लगी, और सखा का स्वभाव तुरंत कृष्ण को कहा, कृष्ण मेरी माँ ने आज बहुत सुंदर छाछ भेजी है, जरा देखो तो। और कृष्ण तुरंत घट 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 करके पी जाते थे। वहां पर कृष्ण यह नहीं देखते थे कि ये कितना झूठा है, इसका झूठा है, ये तो हम ही बहुत बड़े भक्त हो गए हैं कि दूसरे का झूठा नहीं लेते। कृष्ण इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का आदान प्रदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, और भक्ति से इस प्रकार से भगवान को वश में किया जा सकता है। आप कहेंगे मैं भी कल से झूठे बेर लगा दूंगी। अरे झूठे नहीं, अच्छे बेर भी लेने भगवान नहीं आएंगे। झूठे क्या, एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी लाकर रख दो, यदि भाव नहीं है तो भगवान देखेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान के पास कोई कमी नहीं है। भगवान के पास धन की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिस भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में लाइन लगाती हैं कि अब मैं सेवा करूंगी, उस भगवान के पास ये सब कमी है। भगवान भाव से, भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव से रिश्ते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि यह धनी है ये गरीब है। व्याधस्या चरणम, भगवान ने व्याध्र का, एक इतना बड़ा पापी था, भगवान ने यह नहीं देखा कि ये बहुत पाप कर रहा है, भगवान देखा ये भजन कर रहा है। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज की केवल 5 साल के बालक थे, भगवान ने यह नहीं देखा कि छोटा सा बालक मेरी भक्ति कर रहा है तो उस पर आशीर्वाद न करो। तो भगवान गुण नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। माधव भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र भाव देखते हैं, भाव कैसा है। यदि भाव अच्छा है और भाव भगवान बहुत अच्छी, भगवान छोड़ दीजिए इस संसार का व्यक्ति, क्या एक प्राणी भी किसी मनुष्य के भाव को समझ जाता है। एक कुत्ता भी कुत्ते के पास यदि आप पत्थर लेकर जाओगे तो वो भाग जाएगा। एक कुत्ता भी दूसरे के भाव को पहचानता है, तो क्या भगवान भाव को नहीं जानते हैं? बाहर से तो हम बहुत दिखाते हैं, परंतु अंदर क्या भाव है ये भगवान ही जानते हैं। भगवान देख रहे हैं। कुछ लोग भगवान को भोग लगा देते हैं, बहुत कुछ तैयार करते हैं, रख देते हैं, खा लो। वास्तव में ये अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपने को भोजन करना है। घर पे पूछते हैं कि आज क्या कौन सी सब्जी खाओगे, तो कहते हैं आज पनीर मटर बनाओ। बनाएंगे पनीर मटर और साथ में परोठा बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बनाएंगे अपने लिए, लगा देंगे भगवान को, थोड़ा पवित्र कर दीजिए। और लगाने में भी लगा कर चले जाते हैं। अब आप देखिए इस संसार में कोई बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए बड़ा प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, मंत्री को, मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह को आपके घर पर भोजन के लिए बुलाना है तो सबसे पहले उनका कॉन्टेक्ट एक महीने के बाद होगा। उसके वाया 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 करते करते एक महीने के बाद उसके पास पहुंचेंगे और तब जाकर एक महीने के बाद भी आपके घर पर आएंगे। आएंगे तो निश्चित नहीं है, और आने के बाद भी उसको खिलाने के लिए रख दोगे, लो खा लो, खा लेंगे। उसके लिए तो कितना बोलना पड़ेगा, ये खाइए, ये आपके लिए बनाया है, मैंने मेरे हाथ से बनाया है। उसमें भी वो ना कहेंगे कुछ तो कल्पना कीजिए कि एक साधारण मंत्री को खिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मंत्रियों के मंत्री अखिल ब्रह्मांड के नायक जो भगवान है उसे खिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ठक्कर जी? कम से कम एटलीस्ट भगवान का मंत्र तो याद होना चाहिए, नमो ब्राह्मणे देवाय इत्यादि। तो भगवान भाव देखते हैं, शबरी जी के भाव को भगवान ने ग्रहण किया और भगवान ने शबरी जी के जूठे बेर खाए। लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने लक्ष्मण को कहा तुम भी खाओ, बड़े भाई की आज्ञा को कैसे टाले। परंतु फिर भी उसका ले तो रहे थे, लेकिन लेकर इसे पीछे फेंक रहे थे, खा नहीं रहे थे। परंतु आगे चलकर लक्ष्मण भी समझ गए कि वास्तव में ये बेर ही मेरे जीवन में काम में आए हैं। ये शास्त्र की बात नहीं है, मैंने एक संत से सुना है। अब ये कितना प्रामाणिक है मैं नहीं जानता, परंतु है बहुत अच्छी बात। जब भगवान श्री रामचंद्र सीता का हरण हो गया, भगवान ने हनुमान के साथ मैत्री की सुग्रीव के साथ, और लंका चले गए। लंका में जाकर रावण का वध किया। सीता को लेकर भगवान श्री रामचंद्र अवध अयोध्या में वापस आए, और वापस आकर एक दिन की बात, लक्ष्मण जी अपने महल की बालकनी में खड़े थे और खड़े रहकर बहुत सोच रहे थे। और जब सोच रहे थे अकेले में शांत वातावरण में, उसी वक्त भगवान श्री रामचंद्र वहां पर आए। लक्ष्मण जी सोचते सोचते भगवान श्री रामचंद्र को कहे प्रभु मैं आपसे एक बात कहूं। कहो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमारा जन्म एक ही घर पर हुआ, ये सही है? कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम और मैं और आप दोनों एक ही गुरु के नीचे पड़े हैं, ये सही है? हाँ। प्रभु हम और आप एक ही साथ विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। हाँ। हम और आप एक ही साथ जनकपुरी में गए और विवाह किए साथ में, यह भी साथ में हुआ। और साथ ही साथ हम दोनों वनवास में जंगल में गए, और साथ ही साथ सीता को ढूंढने के लिए हम दोनों साथ में रहे परंतु प्रभु मुझे विचार इस बात का आ रहा है, सब कुछ हमने साथ में किया लेकिन फिर भी मेघनाथ के द्वारा मैं ही क्यों मूर्छित हुआ, आप क्यों मूर्छित नहीं हुए। जीवन की सब घटना हमारी एक साथ हुई परंतु मेघनाथ के द्वारा मूर्छित केवल मैं ही हुआ, आप क्यों नहीं हुए। प्रभु ये मैं सोच रहा हूं, बहुत गहराई की बात सोच रहे थे। सब कुछ आप देखिए, राम और लक्ष्मण का सब कुछ साथ में हुआ, युद्ध में चाहे कहीं भी जगह पर, मैं क्यों मूर्छित हुआ। तब भगवान ने इतना ही कहा कि लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हें याद है कि सीता को ढूंढते ढूंढते हम एक भक्ता के घर पर गए थे, शबरी के घर पर। लक्ष्मण ने कहा हाँ। शबरी ने हमें झूठे बेर दिए थे, याद है तुम्हें। लक्ष्मण ने कहा हाँ। और झूठे बेर मैं खा रहा था और मैंने तुमको कहा कि तुम वो बेर खाओ। लक्ष्मण वो बेर तुमने नहीं खाए और वे बेर तुमने नीचे पहाड़ में फेंक दिए और उसी बेर से संजीवनी बूटी बनी। तुमने वो बेर नहीं खाए, वो बेर की संजीवनी बूटी खिलाने के लिए तुम्हें उनके हाथ से मूर्छित होना पड़ा। लक्ष्मण यदि तुमने बेर खा लिया होता तो मूर्छित नहीं होते। इतना प्रभाव है शबरी का, बेर का है। हरे कृष्णा हरे। तो इस प्रकार से शबरी के बेर भगवान श्री रामचंद्र ने खाए और भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। जिस व्यक्ति को उपदेश देने वाले स्वयं भगवान हो उसके जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है। नवदा भक्ति का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को दिया है और गोस्वामी तुलसीदास जी उस उपदेश का वर्णन करते हैं। खैर समय हो चुका है, परंतु शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से शबरी जी भगवान श्री रामचंद्र के धाम साकेत धाम को प्राप्त हुई। इस प्रकार से शबरी जी की यह संक्षिप्त कथा है। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा पात्र यह शबरी जी, यदि हम भी भगवान श्री रामचंद्र भगवान कृष्ण का भजन करेंगे तो हम भी इस प्रकार भगवान के प्रेम को, भगवान के दर्शन को प्राप्त होंगे, भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। और भगवान के धाम को प्राप्त करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। हरे कृष्णा।